हम लोगों ने ज्ञानी की दृष्टि देखी है। ज्ञानी की दृष्टि क्या है? ब्रह्मार्पणम ब्रह्मावि ब्रह्माग्नो ब्रह्मनाहुतम ब्रह्मैवते न गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। उसको सब कुछ ब्रह्म नजर आता है। ब्रह्मार्पणम, जिस चीज से अर्पण कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, जिसको सुआ कहते हैं, चमस कहते हैं, वो भी ब्रह्म है। जिसके लिए कर रहा है वो भी ब्रह्म है। जिस मंत्र से कर रहा है वो भी ब्रह्म है। जिस देश काल में कर रहा है वो भी ब्रह्म है। जिस फल के लिए कर रहा है वो भी ब्रह्मन है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मावि, जो सामग्री जाल रहा है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्माग्नो, अग्नि भी ब्रह्म है। ब्रह्मनाहुतम, जो कर रहा है वो भी ब्रह्म है। वो कैसे ब्रह्म हुआ? ज्ञानी है, ज्ञानी तो ब्रह्म है। अगर आप अपने आत्मा को जान लो आप ही ब्रह्म हो जाओगे। अहम ब्रह्मास्मि, वो ब्रह्म है। ब्रह्म ही बतेन गंतव्यम, वो ब्रह्म को प्राप्त होगा। जिसकी ऐसी दृष्टि है सब जगह खाली ब्रह्म ही नजर आता है उसको, तो ब्रह्म को प्राप्त होगा। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? ब्रह्म कर्म समाधिना। उस व्यक्ति का नाम है ब्रह्म कर्म समाधिना। ज्ञानी की दृष्टि हुई। अब हम लोग को क्या करना है? तो हम लोग को बारह, हम लोग को यज्ञ देखे, हम उस यज्ञ को हमको करना है। भगवान ने केवल बारह यज्ञ यहां बताए कि ऐसा करना चाहिए साधक को। क्यों करना चाहिए? मन की शुद्धि के लिए करना है। कैसे मन शुद्ध होता है? यज्ञ करने से मन शुद्ध होता है। क्यों क्यों शुद्ध होता है? कैसे शुद्ध होता है? क्योंकि हम ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं। जब यज्ञ कर रहे हैं तो मंत्र भगवान के लिए है। मन कहां है? भगवान के पास है। जब मन दुनिया में घूमता है, जगत में घूमता है, तब वो मन अशुद्ध होता है। अशुद्ध होता है मतलब वासना क्रिएट करता है। और जब मन भगवान के पास होता है तो वो मन शुद्ध होता है। तो इसलिए कहते हैं कि जब भी आप कोई भी यज्ञ करो, भगवान के लिए करो या जप करो, कहाँ है मन आपका? भगवान में है। कहीं तीर्थ में जाओ, कहाँ है मन? मंदिर में जाओ, मन कहाँ है? तो इस तरीके से जब जब हमारा मन जिस जिस क्रिया में भगवान की तरफ जाता है तो मन शुद्ध होता है। मन शुद्ध होता है तो जब हम यज्ञ करेंगे तो साधक के लिए हम लोग के लिए कहा आप ये करो, ऐसे करते 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 आपका मन शुद्ध हो जाएगा। अच्छा तो 12 किस्म के बताए, तो ये लोग करते 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 फिर इनको क्या होगा, यज्ञ छपित कलमसा, ये इन लोगों का नाम क्या है, यज्ञ छपित कलमसा, ये यज्ञ करते 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 इनके पाप कलमस जो है साफ हो गए। पाप साफ हो गए मतलब क्या हो गया, वासना साफ हो गई। वासना साफ हो गई मतलब क्या, जब हम भगवान के लिए यज्ञ करते हैं तो भगवान का कोई यज्ञ का वासना नहीं बनती है, वासना तो लाइक्स एंड डिसलाइक्स आपकी जो है आप संसार में जब जगत में घूमते हो तब बनती है। अब आगे भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्ट अमृत भुजा, बोले एक तो वो करते हैं जो यज्ञ करते हैं, बहुत से लोग यज्ञ नहीं करते हैं, यज्ञ नहीं करते हैं मगर यज्ञ में सहायता करते हैं, यज्ञ में जाते हैं, यज्ञ में जाते हैं जाकर क्या करते हैं, यज्ञ शिष्ट, यज्ञ शिष्ट क्या होता है, हाँ और जो हम करते हैं एक एक ड्रॉप हम बचा के रखते थे उसको यज्ञ शिष्ट कहते हैं, या आपने यज्ञ के अंदर जो भोजन दिया, भोजन के बाद जो उसको अर्पण करने के बाद में जो बचा भोजन वो भी यज्ञ शिष्ट है। तो यहां कहते हैं यज्ञ शिष्ट अमृत, उसको कहते हैं अमृत, भगवान को अर्पण करने के बाद में जो बचा उसको हम अमृत कहते हैं। बोलते जो अमृत खाता है, अमृत खाता है मतलब यज्ञ शिष्ट को जो खाता है उसको भी कहते हैं यान्ति ब्रह्म सनातन, वो भी ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। कौन सा ब्रह्म, सनातन ब्रह्म, यान्ति मिल जाता है। देखो यज्ञ भी नहीं करना है केवल जाके यज्ञ शिष्ट या भोजन कर लो, क्या विज्ञान है इसके पीछे, इसके पीछे यह विज्ञान है कि वो व्यक्ति आस्तिक है, उसकी भगवान में आस्था है, आज नहीं तो कल वो यज्ञ करेगा, यज्ञ करेगा मन शुद्ध होगा फिर उसको भी ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो यज्ञ शिष्ट अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, नायम लोक अस्य अयज्ञस्य कुतो अन्य पुरुषोत्तम, भगवान कहते हैं कि जिसने यज्ञ नहीं किया अयज्ञ, ऐसे बहुत लोग हैं, हम लोग सब क्या हैं, अयज्ञ वाले में ना, यज्ञ तो नहीं किया और ना अमृत खाया तो हम लोग क्या बोले अयज्ञ। भगवान कहते हैं ना अयम लोक, इस लोक में अस्ति अयज्ञस्य, इस लोक में भी उसको शांति नहीं है सुख नहीं है, कुतो अन्य पुरुषोत्तम, तो अन्य लोक में क्या मिलेगा, लोग सोचते हैं कि हमारा जो है इस जब यहां मर जाएंगे दूसरे लोक में जाएंगे तब वहां हमें सुख मिलेगा, नहीं 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 मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं मिलेगा कि आपने अगर यज्ञ नहीं किया तो आपका मन शुद्ध नहीं हुआ, आपका मन अगर अशुद्ध है तो आपको दूसरे लोक में क्या सुविधा मिलेगी, क्या सुख मिलेगा, आप तो फिर जन्म लोगे एक। शंकराचार्य जी कहते हैं यज्ञों के शेष का नाम यज्ञ शिष्ट है, यज्ञों का शेष जो हमने बताया आपको यज्ञ में देने के बाद जो बचा वही अमृत है, उसको जो भोगते हैं वे यज्ञ शिष्ट अमृत भोजी हैं, उसको अमृत भोजी कहते हैं जो उसको अमृत को खाएगा, उपयुक्त योगों करके उससे बचे हुए समय द्वारा यथाविधि प्राप्त अमृत रूप विहित अन्न को भक्षण करने वाले यज्ञ शिष्ट अमृत भोजी पुरुष सनातन यानी चिरंतन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। देखो भगवान कह रहे हैं यज्ञ नहीं करना है मत करो, कम से कम जहां यज्ञ हो रहा है वहां जाके अमृत तो ले लो तब भी आप ब्रह्म को प्राप्त कर जाओगे। हे कुरुश्रेष्ठ जो मनुष्य उपयुक्त यज्ञों में से एक भी यज्ञ नहीं करता है, एक भी यज्ञ नहीं करता है, अयज्ञ यज्ञ शिष्ट भी नहीं लिया उसने, उस यज्ञ रहित पुरुष को सब प्राणियों के लिए जो साधारण है ऐसा यह लोक भी नहीं मिलता है, जो साधारण प्राणियों को मिलता है वो भी नहीं मिलता है, वासना उसकी बढ़ती जा रही है ना, जिसने यज्ञ नहीं किया उसका मन शुद्ध नहीं हो रहा है, उसका मन जो यज्ञ नहीं कर रहा है वो किस तरफ है, जगत में है, और जो जगत में है उसका मन अशुद्ध बढ़ता जाता है। फिर विशेष साधनों द्वारा प्राप्त होने वाला अन्य लोक तो मिल ही कैसे सकता है, अन्य लोक ऊपर के लोक में अगर जाना है तो उसके लिए तो विशेष साधन करने होते हैं ना, आपको स्वर्ग जाना है उसके लिए अलग साधन है, आपको उससे भी हायर लोक के अंदर जाना है उसके लिए दूसरी किस्म की पूजा करनी होगी, उपासना करनी होगी, तब आप पहुंचोगे ऊपर में, तब आप पहुंचोगे। एवं बहुविधा यज्ञ विदिता ब्राह्मणों मुखे, मानो अर्जुन पूछ रहा है भगवान ये आपको कहां से मिला है, कहां से रेफरेंस ला रहे हो, पारा यज्ञ की जो बात की है वेद में लिखा हुआ है। बोलते बहुत से ऐसे यज्ञ हैं, बहुविधा यज्ञ विदिता ब्राह्मणों मुखे, कर्म ज्ञान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमुच्य से, ये के सारे कर्म ज्ञान हैं, काया वाचा मनसा से होने वाले हैं, ऐसा जानकर तू मुक्त हो जा। क्या जानकर? शरीर मन और वाक क्रिया से ये सब कर्म होते हैं, और मैं कौन हूं? मैं अकर्ता हूं। कौन है वो अकर्ता? आत्मा अकर्ता है। केवल इतना ही जानना है, मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। आत्मा कैसा है? अकर्ता है। इससे आपको मुक्ति हो जाएगी। शंकराचार्य जी कहते हैं इस प्रकार उपयुक्त तो बहुत प्रकार के यज्ञ ब्रह्म यानी वेद के मुख में विस्तृत हैं। वेद में लिखा हुआ है, बहुत से लिखे हुए हैं यज्ञ। उन सब यज्ञों को तू कर्मज कायिक वाचिक और मानसिक क्रिया द्वारा ही होने वाला जान। जितने भी यज्ञ हैं वो कायिक मतलब शरीर से हो सकते हैं, या मन से, या स्पीच वाचिक हो सकते हैं। वे यज्ञ आत्मा से होने वाले नहीं है। आत्मा से होने वाले नहीं मतलब आत्मा यज्ञ नहीं करता है। आत्मा क्यों नहीं यज्ञ करता है?
करता है।
ये आपको बराबर याद रखना होगा, आत्मा से नहीं होने वाले हैं। हम लोग अभी जो कर्म कर रहे हैं वो आत्मा कर रहा है? आत्मा नहीं करता है। आत्मा की प्रेजेंस में सारे कर्म होते हैं, आत्मा नहीं करता है। इलेक्ट्रिसिटी, एक बल्ब के अंदर प्रकाश आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, बल्ब दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में बल्ब प्रकाश दे रहा है। बल्ब निकाल दो प्रकाश आएगा? इलेक्ट्रिसिटी है, प्रकाश आएगा? नहीं आएगा। उसी तरह से आत्मा कुछ करने वाला नहीं है, क्योंकि आत्मा हलन चलन आदि क्रियाओं से रहित है। हलन चलन, वो चलता भी नहीं हिलता भी नहीं है। क्यों नहीं? ठसा ठस। हलन हिलता नहीं है, चलन कहां चल के जाएगा, सब जगह ठसा ठस भरा हुआ है, हलन चलन नहीं है। सूत्रांग, इस प्रकार जानकर तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। इस तरह से जानने से ही अशुभ से मुक्त हो। क्या जानना है? मैं कौन हूं? मैं अकर्ता आत्मा हूं। ये जानने से ही आप मुक्त हो जाओगे। अर्थात ये सब कर्म मेरे द्वारा संपादित नहीं है, मैं तो निष्क्रिय और उदासीन हूं। इस प्रकार जानकर इस सम्यक ज्ञान के प्रभाव से तू संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। देखो, हमको केवल जानना है, करना कुछ नहीं है, मगर इस ज्ञान पाने के लिए पहले बहुत कुछ करना है। केवल जानना है। क्या जानना है? हम कौन है? हम अकर्ता आत्मा है, ये आपको जानना है। आत्मा कुछ करता नहीं है। फिर भगवान कहते हैं, ब्रह्मार्पण इत्यादि श्लोक द्वारा यथार्थ ज्ञान को यज्ञ रूप से संपादन किया हुआ, फिर बहुत से यज्ञों का वर्णन किया। तो सबसे पहले हमने देखा ना ब्रह्मार्पण, ब्रह्मार्पण किसका था? वो ज्ञानी का विजन था, ज्ञानी वैसे करता है। और फिर साधक लोग के लिए उन्होंने 12 यज्ञ की चर्चा की। अब पुरुष का इच्छित प्रयोजन जिन यज्ञों से सिद्ध होता है, उन उपयुक्त अन्य यज्ञों की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ की स्तुति करते हुए कैसे है उसको कहते हैं, क्या है? अब भगवान ने बताया, देखो इतने किस्म के द्रव्य यज्ञ हैं। द्रव्य यज्ञ क्या होता है? जो पंच महाभूत से बने हैं। अब जैसे मान लो आप जो है यज्ञ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? अपनी ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों से करते हो ना, वो किससे बनी है? इसलिए वो क्या हुआ? द्रव्य यज्ञ हुआ। आपको फल क्या मिला? आपने मान लीजिए स्वर्ग के लिए यज्ञ किया, स्वर्ग किससे बना हुआ है? पंच महाभूत से। आपने पुत्र के लिए यज्ञ किया, पुत्र किससे बना है? तो ये सारे के सारे द्रव्यमय यज्ञ हो गए, द्रव्यमय। भगवान कहते हैं द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ बेहतर है। क्यों बेहतर है बताओ? हमने बताया था पिछली बार, द्रव्य यज्ञ के सारे फल सीमित हैं। क्या हैं? द्रव्य से बने हुए हैं, नाशवान हैं। ज्ञान यज्ञ से क्या मिलेगा? ब्रह्म मिल जाएगा, इनफाइनेट। वो क्या नाशवान है? नहीं। तो जिस यज्ञ का फल ब्रह्म है वो है ज्ञान यज्ञ, क्योंकि उसका फल हाँ हाँ ये तो ज्ञान यज्ञ है। जिसका फल ब्रह्म है, जिसको करने से, जिसको पढ़ने से, जिसको जानने से, गीता में बार बार केवल ज्ञात्वा 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 कहा गया, केवल जानना है जानना है जानना है, पाना नहीं है, वो तो है हमारे पास में। जो चीज हमारे पास ऑलरेडी होती है और हमें पता नहीं होता है उसको केवल जानना होता है, उसको पाना नहीं है। आत्मा न तो गीता देगी, न भगवान देंगे, न गुरु देगा। आत्मा आपके पास है मगर आपको नहीं मालूम है। कौन बताएगा? शास्त्र बताएंगे, गुरु बताएंगे, तब आपको पता लग जाएगा अरे हमारे पास आत्मा है। केवल बताने से मिल जाएगा। और उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल गुरुदेव दिया करते थे। कौन सा एग्जाम्पल? नेकलेस। कौन सा नेकलेस? ऑन योर फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी योर हस्बैंड लविंगली गेव यू वन गोल्ड नेकलेस, आफ्टर दैट ही नेवर गिव। अब वो नेकलेस जो है, अब वो स्त्री पहनी हुई है और उसको भ्रम हो गया किसी तरीके से कि नेकलेस गुम हो गया। अब वो सारा दिन खोज रही है इधर उधर, अब मिले कैसे? सारा उलट पलट कर दिया, दिन में खाया भी नहीं। शाम को जो है जब पति आते हैं, बोले क्या बात है तुम्हारा मुंह कहीं से झुका हुआ है? अरे तुमने जो नेकलेस दिया था वो पता नहीं मिल नहीं रहा, कहीं नहीं है। बोला अरे आपके गले में है। उस नेकलेस को पाने के लिए कुछ करना पड़ा? कुछ नहीं। क्यों? नेकलेस आपके पास था, किसी ने बता दिया आपके पास है। उसी तरह आत्मा भी आपके पास है, केवल आपको केवल बताना है किसी को। श्रेयान द्रव्य में यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप है। ओ अर्जुन, ज्ञान यज्ञ जो है बहुत श्रेय है, श्रेष्ठ है, बेटर है द्रव्य में यज्ञ से। द्रव्य में यज्ञ का फल द्रव्य है और वो सारे द्रव्य पेरिशेबल हैं। आगे एक जगह भगवान जाके बताएंगे कि हम जो है ना सब अल्प बुद्धि वाले हैं। हम लोग मंदिर में जाते हैं, क्या मांगते हैं मंदिर में जाके? क्या मांगते हैं आप? पंच महाभूत मांगते हैं, पुत्र दे दो, घर दे दो, गाड़ी दे दो, स्वास्थ्य दे दो, क्या है सब? हुआ कि नहीं पंच महाभूत? ये फल फाइनाइट है कि नहीं है? धन दे दो, नौकरी दे दो, सब फाइनाइट, यही मांगते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, बोले आप लोग को मांगना भी नहीं आता, क्या मांगना चाहिए? आपको यह भी मालूम नहीं है कि श्रेय क्या है हमारे लिए। सर्व कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। बोले सर्व कर्म अखिलम, कर्म जितने भी आप कर्म कांड कर रहे हो, सर्व का मतलब हुआ कर्म कांड, अखिलम का मतलब हुआ उपासना। जितने भी आप कर्म करते हो, कर्म कांड करते हो, और जितने भी उपासना करते हो, वो कहां खत्म होती जाकी? कर्म अगर योग से करें, कर्म कांड रिचुअल अगर करते हैं, उससे मन शुद्ध होता है। और उपासना से क्या होता है? चित्त एकाग्रता होती है। तो चित्त शुद्धि और चित्त एकाग्रता जब दोनों आपके पास में हो जाएंगी तब आपको ज्ञान होगा। तो सर्व कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ज्ञाने परिसमाप्यते मतलब आपको ज्ञान के लिए वो तैयार कर देते हैं। ज्ञान के लिए तैयार कर देते हैं। ज्ञान क्या है? तत्त्वमसि, मैं ब्रह्म हूं, इतना ही ज्ञान है, बस इतना ही ज्ञान है। मैं रोता नहीं है, रो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? चित्त शुद्धि, चित्त एकाग्रता नहीं है। क्यों चित्त शुद्धि नहीं हो रही है? क्योंकि कर्म योग नहीं कर रहे हैं। मालूम सब है हमें, सब मालूम है हमें, क्या करना चाहिए चित्त शुद्धि के लिए हमें मालूम है, मगर हम करते नहीं हैं। अगर नहीं करते हैं तो आपके पास में वो डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन है कि माथा दर्द हो तो एस्पिरिन ले लेना, प्रेस्क्रिप्शन भी है, गोली भी है, मालूम है, नहीं लेते हैं तो सिर दर्द जाएगा। तो आपको मालूम है कर्म योग करने से चित्त शुद्धि होती है, मैं नहीं करेंगे तो चित्त शुद्ध होगा? नहीं होगा, करना होगा। अच्छा, तो ये ज्ञान कैसे प्राप्त करें? अब भगवान बताते हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त करना होगा। ये 34वां श्लोक, तद्विद्धि प्रणिपातेन,
तद्विद्धि प्रणिपातेन,
तद्विद्धि प्रणिपातेन,
परिप्रश्नेन सेवया,
परिप्रश्नेन सेवया,
उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम्,
उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम्,
ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः,
ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, तद्विद्धि प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन सेवया,
उपदिशन्ति ते ज्ञानम्, ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः।
तद्विद्धि, उसको जानो, आप जान सकते हो। भगवान कहते हैं तद्विद्धि, उसको जानो। कैसे जाने? तो तीन चीजें यहां कही, प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन, सेवया, तद्विद्धि। किनसे जाने? ज्ञानिन तत्वदर्शिन, जो ज्ञानी है उनके पास जाओ, ज्ञानी जो है उनके पास जाओ। कौन ज्ञानी है, कौन तत्वदर्शी है, उसको हम देखेंगे। उनके पास जाके बोलते हैं दंडवत प्रणाम करो, प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन, फिर उनको प्रश्न करो, सेवया, उनकी सेवा करो। इतना करने के बाद में उपदेक्षन्ति, उपदेक्षन्ति फ्यूचर टेंस है। इतना करने के बाद जब वो ठीक समझेंगे कि आप इस ज्ञान के लिए तैयार हैं, तब आपको देंगे। ऐसा नहीं कि आप जो है बोलो हमको बताओ, अभी बताओ और अभी दे दें, ऐसा ऐसा नहीं है। तो आपको ये ज्ञान कहाँ मिलेगा? गुरु के पास मिलेगा, एक नंबर। पुस्तक से मिलेगा? पुस्तक से मिलेगा, पुस्तक से मिलेगा, मगर पुस्तक के अंदर कई एक शॉर्ट कमिंग्स हैं। पुस्तक को प्रश्न करने से उत्तर देगी? पुस्तक की अगर कोई डाउट हो तो हमारा डाउट क्या क्लियर होगा? पुस्तक की हम सेवा कर सकते हैं क्या? झाड़ मूझ खाली कर सकते हैं, और कुछ सेवा नहीं हो सकती उसकी, कोई सेवा नहीं हो सकती है। तो पुस्तक से नहीं होगा। तो उस ज्ञान को पाने के लिए क्या करना है? तत् ज्ञान प्रणिपाते न विद्धि, प्रणिपाते न, राइट एटीट्यूड चाहिए। देखो कितनी चीजें होगी तब आपको ज्ञान मिलेगा, राइट एटीट्यूड, प्रणिपाते न, प्रणिपात क्या देखेंगे, ज्ञान परिप्रश्ने न, परिप्रश्न ना, राइट इंक्वायरी। तो पहला राइट एटीट्यूड, दूसरा राइट इंक्वायरी। प्रश्न कौन सा होना चाहिए? हमारी बेटी की शादी कैसे होगी? ये प्रश्न नहीं हुआ। राइट प्रश्न होना चाहिए। तद ज्ञान सेवया, राइट ट्यूनिंग ऑफ माइंड भी होना चाहिए. तो राइट एटीट्यूड नंबर वन, उसके बाद में राइट इंक्वायरी, राइट क्वेश्चन होना चाहिए, और तीसरा जो है राइट ट्यूनिंग ऑफ माइंड होना चाहिए. प्रणिपात क्या होता है? देखो प्रणिपात वर्ड बड़ा अच्छा है, प्र प्लस नी प्लस पातेन. प्र मतलब हो गया प्रकर्षेन, प्रकर्षेन, नी मैंने नीचे हो जाना, पातेन पथ, पथ एक होता ना पथ धातु गिरना. प्रणिपातेन मतलब आप जो है दंडवत प्रणाम करो. प्रकर्षेन नी मतलब नीचे हो जाओ, पातेन गिर जाओ. तो इसको दीर्घ प्रणाम भी कहते हैं, दंडवत प्रणाम या दीर्घ प्रणाम कहते हैं. अच्छा साष्टांग प्रणाम क्या होता है? सुना तो है ना आप लोगों ने. इसमें आठ अंग जमीन के साथ में हो जाने चाहिए. क्या क्या चीज है ये? तो कहते हैं जानुभ्याम च तथा पदभ्याम पाणिभ्याम मूर्साधिया शिरसा वचसा दृष्ट्या प्राणमो अष्टांग ईरिता. ये आठ चीजें हैं. क्या है? जानुभ्याम घुटने. जब आप जो है प्रणाम करते हो सष्टांग तो घुटने जमीन पर. जानुभ्याम पदभ्याम पैर, दोनों पैर, तो घुटने दोनों जमीन पर, पैर भी जमीन पर. पानी व्याम हाथ भी दोनों जमीन पर सटे होने चाहिए. जब करते हो हाथ भी नीचे होने चाहिए, टचिंग अर्थ फ्लोर ग्राउंड. अच्छा उर्सा छाती भी जमीन से टच होनी चाहिए. धिया बुद्धि से भी आपको करना है, यही नहीं कि फिजिकल प्रणाम कर रहे हैं, सरेंडर विथ ह्यूमिलिटी करना है. बुद्धि का भी हमको सरेंडर करना है. अगर बुद्धि सरेंडर नहीं होगी तो काम नहीं होगा. फिजिकली आप सरेंडर कर रहे हो मगर बुद्धि से नहीं हो रहा है. सिरसा हेड, ये भी आपको जमीन पर टेकना है सिरसा. वचसा वाक भी, आपके वाक भी है फ्लोर की तरफ है, आप जो है मुंह है नीचे है. दृष्टया आंखें कहां है? प्रणामो अष्टांग ईरिता, इसको प्रणाम कहते हैं, अष्टांग प्रणाम इसका नाम है. तो ऐसा पहले प्रणाम करना है. देखो प्रणाम कैसे करना होगा ये भी बता दिया, ऐसा प्रणाम करो. तो ये एक मुद्रा है, एक मुद्रा मतलब इस मुद्रा में आप असहाय हैं, आप कुछ नहीं कर सकते. उस तरह से अगर आप उल्टे लेट जाओ तो उस मुद्रा में आप कुछ नहीं कर सकते, दूसरा कुछ कर सकता है. दूसरा कुछ कर सकता है. ऐसा व्यक्ति मानो ये कह रहा हो कि मैं तो आपको गुरु देख भी नहीं पा रहा हूं, केवल आप मेरे को देख रहे हो, देख रहे हो. देखो बहुत महात्मा लोग कहते हैं बच्चे भी तो असहाय होते हैं. छोटा बच्चा वो कैसा होता है? असहाय होता है. उसे कुछ चाहिए होता है तो जो है चिल्लाता है, मगर कम से कम आंख तो उसके ऊपर है, देखता है. ये तो उससे भी नीचे श्रेणी का हो गया ना, ये तो देख भी नहीं पा रहा है. इसको संपूर्ण सरेंडर कहते हैं. मानो शिष्य कह रहा है मैं आपका हूं, मैं पूरी तरह आपको सरेंडर कर रहा हूं. अब प्रश्न आता है किसे सष्टांग प्रणाम करना चाहिए, किसे करना चाहिए? एक तो भगवान को कहा गया है, भगवान के पास आप जाते हो तो सष्टांग प्रणाम करो. दूसरा कहा गया है कि गुरु के पास जब जाओ सष्टांग प्रणाम करो. तीसरा माता पिता, इनके पास जब जाओ तो सष्टांग प्रणाम करना चाहिए. तो राइट एटीट्यूड क्या हुआ? प्रणिपातेन का मतलब क्या हुआ? शरणागति, मैं आपकी शरण में आ गया हूं, ऐसा ये राइट एटीट्यूड है. अच्छा ऐसे व्यक्ति के प्रति गुरु का भी कर्तव्य है, वह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरु लेगा. जैसे हमको विभीषण गीता में आता है, राम जी विभीषण शरण में आते हैं, सरेंडर कर दिया, अब भगवान उसका पूरा भार लेते हैं विभीषण का. तो जब हम ऐसा सरेंडर करते हैं तो गुरु हो या माता पिता हो या भगवान हो तो उसका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, भार लेते हैं. और गीता में भी आगे एक जगह आया है, मामे भी ये प्रपद्यन्ते माया मेतम तरंदिते, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, माया कैसी है? भगवान कहते हैं मेरी माया है, ये गुणमयी है, इसमें तीन गुण हैं, वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस, मगर मामे भी ये प्रपद्यन्ते, जो मेरे को सरेंडर करता है उसके लिए मैं माया को हटा देता हूं। तो सरेंडर जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रणिपातेन का मतलब हुआ आपका एटीट्यूड राइट होना चाहिए, सरेंडर ठीक होना चाहिए। परिप्रश्नेन तत् ज्ञान परिप्रश्नेन विद्धि, परिप्रश्न क्या हुआ? परि का मतलब सर्वतः आलोक के, पूरे जीवन की समझ, पूरे जीवन की समझ आपको अनुभव हो गया है। क्या अनुभव हुआ है? कि ये दुखालय में हमको दुख मिलेगा सुख नहीं मिलेगा, इसलिए हमको सुख की खोज करनी है। तो प्रश्न कैसा होगा? अब वो सांसारिक प्रश्न नहीं होगा। कैसा प्रश्न होगा? आध्यात्मिक प्रश्न होगा, कैसे हमको परमानेंट सुख मिलेगा। हम सब सुख खोज रहे हैं मगर हमको मिल नहीं रहा है, हम सब बाहर खोज रहे हैं, हम जगत में सुख खोज रहे हैं। जगत के अंदर जो भी मिलेगा वो क्या है? द्रव्य है, और जो द्रव्य है वो पांच महाभूत का है, जो पंच महाभूत का है वो सारा का सारा नष्ट होने वाला है, मगर हमको चाहिए परमानेंट सुख सबको। परमानेंट सुख, अभी बाल विहार कैंप के अंदर हम लोग को ये सब सिखाना था बच्चों को, कौन सा सुख चाहिए। छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं परमानेंट सुख चाहिए। सबको अनुभव है, सबको अनुभव हो गया कि एक सुख होता है जो टेम्पररी होता है, दूसरा परमानेंट होता है। फिर हम लोगों ने बताया कि देखो दो किस्म की यूनिवर्सिटी होती है, एक तो सेकुलर जहां पर आपको ज्ञान मिलेगा उससे आपको पैसा कमाने के लिए जरूरी है, वो भी पढ़ना है, और दूसरा एक फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी होती है जिसको आश्रम कहते हैं, मठ कहते हैं। आगे के जमाने के अंदर जाना पड़ता था, तो शंकराचार्य जी ने ऐसी चार यूनिवर्सिटी बनाई थी। कितने साल पहले? 1200 साल पहले, 1200 ईयर एगो, श्रृंगेरी मठ, द्वारका मठ, पूरी मठ, जोशी मठ, वो यूनिवर्सिटी आज तक चल रही है। उस यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जाता है? आध्यात्मिक ज्ञान। आपकी यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जाता है? आपकी यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जाता है वो सेकुलर ज्ञान है। उससे क्या मिलेगा? पंच महाभूत मिलेगा, द्रव्य मिलेगा, वो द्रव्य परमानेंट नहीं है। आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी में जो मिलेगा वहां से क्या मिलेगा आपको? आपको ब्रह्म का पता लग जाएगा, ब्रह्म का पता लग जाएगा तो परमानेंट सुख मिलेगा। देखो आप बच्चे बोलते हैं कि हमको तो फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी में भी जाना है, तो हम बोले तुम तो आ रहे हो बाल विहार में, यही तो फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है। बोलो चिन्मय मिशन फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, चिन्मय मिशन फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है, यहां आपको वो ज्ञान मिलेगा। तो लोग सारा वेदांत सुनने के बाद में भी जो है प्रश्न सांसारिक पूछ बैठते हैं, सब कुछ होने के बाद भी सांसारिक प्रश्न हो जाते हैं। तद विद्धि सेवया, तो राइट एटीट्यूड, पूरा सरेंडर होना चाहिए, उसके बाद में प्रश्न आध्यात्मिक प्रश्न होना चाहिए, उसके बाद में सेवया, सेवा करना होगा। तो जो है गुरु देखते हैं किसी स्टूड है कि नहीं, कैसे पता लगेगा वो किस लेवल का है, किस स्तर का है, उसका मन शुद्ध है कि नहीं, कैसे पता लगेगा? जब वो वहां सेवा करेगा तब तो पता लगेगा। एक प्रश्नोपनिषद है, प्रश्नोपनिषद में 6 शिष्य गुरु के पास गए और जाके पहले ही पूछ लिया कि हमको ब्रह्म ज्ञान चाहिए, ब्रह्म के बारे में बताओ। गुरु कहता है कि तुम पहले 12 महीने हमारे यहां सेवा करो, उसके बाद तुम प्रश्न करना, मेरे को उत्तर आएगा तो मैं बताऊंगा, मगर उस शिष्य जो है पक्के शिष्य थे, उन्होंने 12 महीने सेवा की, कोई गया नहीं। आप लोग में से कोई करोगे? गुरु ऐसा बोलेगा कि 12 महीने सेवा करने के बाद में आप मेरे को प्रश्न करना, मेरे को तब उत्तर आएगा तो मैं बताऊंगा, आप जाओगे उसके पास में, उस गुरु के पास में? तो कभी नहीं, माता का नाम है, कभी नहीं जाएंगे। तो जब आप गुरु की सेवा करते हो ना, तब गुरु को पता लगता है, आपका स्टैंडर्ड के बारे में पता लगता है, आपका मन कितना शुद्ध है आपके बारे में पता लगता है। अगर कोई आलसी व्यक्ति हो तो गुरु उसको बोलेगा नारायण सेवा करो जाओ। कोई अगर बैठा हो चुप से, आप सेवा करने बैठे हो, तब तो पता लगेगा कि आप आलसी हो कि राजसी को कि सात्विक हो। ऐसे लोग को क्या बोलेगा, उसको साधना देगा, चलो भाई ये करो तुम। दूसरे लोगों को दूसरे किस्म की साधना देगा। जब आप सेवा करते हो तब पता लगता है कि भाई आपका क्या नेचर है, आपका मन कितना शुद्ध है, आपकी ट्यूनिंग कैसी है। इस तरह से गुरु जो है बताता है। उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्ववर्तिनः, वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञानी है, ज्ञानी न, उसको ज्ञान है, तत्वदर्शिन है, दे आर अबाइडिंग इन दैट, उसको पूरी तरह से मालूम है। मगर उपदेच्छन्ति, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर में बताएंगे आप तैयार हो कि नहीं। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, अशोक जी ने मेरे को एक रेफरेंस दिया कि एक महिला आपसे गीता के ऊपर प्रश्न करना चाहती हैं, बहुत दूर रहती हैं और उनके पास साधन नहीं है यहां तक आने का, आप फोन कीजिए उनको, उनके कुछ प्रश्न है। आज हमने फोन किया, उनसे बात हुई, दुनिया भर के प्रश्न, उन्होंने बहुत किस्म की गीता पढ़ी है, गीता पढ़ने के बाद में टोटली कंफ्यूज्ड हैं, केवल पुस्तक से पढ़ रहे हैं। फिर बोलते हैं कि अगर लोग जो है मुक्त होते जाते हैं, फिर जनसंख्या कमती क्यों नहीं होती? आप किसी ऐसे रियलाइज सोल के बारे में बता सकते हैं? तो पहला प्रश्न तो ये निश्चित हो गया कि आप रियलाइज सोल नहीं हो। आप किसी ऐसे रियलाइज सोल को जानते हैं जो है? हम बोला बहुत है रियलाइज सोल। फिर प्रश्न करते 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 आते आधे घंटे तक जब प्रश्न हो गया, तुमने कहा अम्मा देखो फोन पर तो होता नहीं है, मैं आपको एक सलाह दे सकता हूं कि आप नियरेस्ट जहां पर गीता का आपको अर्थ समझाया जाए ऐसी जगह पर जाओ, ऐसी जगह जाओ, नहीं तो चिन्मय मिशन आओ। तो उनकी असुविधा है, कुछ नहीं आ पाती हैं, तो फोन पर नहीं होगा। कितना आप फोन पर बताओगे, कितना समझाओगे? जिसको बेसिक ज्ञान ना हो उसको क्या बता दोगे आप? तो उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना, जब राइट ट्यूनिंग हो जाएगी उसके बाद में ज्ञान देंगे। जब आपका मन शुद्ध उनको नजर आएगा गुरु को कि इसका मन शुद्ध हो गया है, तब आपको वो ज्ञान देंगे। अच्छा, गुरु की विशेषता क्या है? ज्ञानी न, शास्त्र निपुण है, श्रोत्रिय है, तत्वदर्शन निष्ठ है, ब्रह्म में निष्ठ है। वो उसको अध्यात्म के बारे में पता है, उसको पता है। जैसे एक मैथ के टीचर के पास जाओगे तो मैथमेटिक्स पढ़ाएगा, उसको अध्यात्म पूछोगे तो बताएगा क्या? वो कुछ नहीं मालूम है उसको। तो अध्यात्म के टीचर के पास में जब जाओगे तब वो आपको अध्यात्म बताएगा, कैसे जाना चाहिए, गुरु को अप्रोच कैसे करना चाहिए। तद विज्ञानार्थ गुरु में बाब अभिगछेत समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ, मुंडक उपनिषद कहता है। जब आप गुरु के पास जाओ तो कैसे जाओ? तत् विज्ञानार्थ, तत् मतलब आत्मा के संबंध में, अगर कुछ ज्ञान लेना हो उसके बारे में, विज्ञान उसका अनुभव करना हो, तो गुरुमेव अभिगच्छेत, गुरु के पास जाओ। समित पानी, हाथ में कुछ समित पानी लेके जाओ। आगे काल, आगे के युग में, आगे समय में, प्राचीन काल में गुरु का आश्रम फॉरेस्ट में होता था, जंगल में होता था, वो यज्ञ वगैरह बहुत करते थे, तो क्या चाहिए, सूखी लकड़ियां चाहिए, तो समित पानी मतलब जब जाओ तो ईंधन लेके जाओ। अब गुरु पत्नी उस ईंधन से खाना भी बना के खिलाएगी, उस ईंधन से ये भी होगा। अब आप चले गए बिना कुछ लिए ही, तो आप तो बोझ हो गया ना। तो कुछ जो है लेके जाओ। अच्छा, ज्ञानी कैसे आपको ज्ञान देंगे, मतलब शास्त्र के अनुसार देंगे, शास्त्र में जैसा है वैसा कहेंगे, बिना शास्त्र के ज्ञान नहीं हो सकता। आप आज के युग में आपको बहुत गुरु मिलेंगे जो आपको एक्स टेम्पो ज्ञान देते हैं, एक्स टेम्पो, मगर शास्त्र नहीं जानते। कई जगह शास्त्र का उल्लंघन भी बोल जाते हैं, उल्टा बोल जाते हैं। एक बार गुरुदेव ने तपोवन महाराज से पूछा कि आप बिना शास्त्र के ज्ञान दे सकते हो, तो उन्होंने कहा जाओ एक गिलास मेरे लिए पानी लेके आओ। पानी लेके आए गिलास में, हम बोला तुमसे पानी मांगा तो तुम गिलास क्यों लाया, पानी लाओ। दे सकते हो पानी बिना गिलास के, नहीं दे सकते। उसी तरह ज्ञान बिना शास्त्र के नहीं दिया जा सकता। आप कितने टीवी चैनल खोल के देखो, कितने लोग बैठे हुए हैं ज्ञान दे रहे हैं, मगर ना वो गीता को रेफर करते हैं, ना उपनिषद रेफर करते हैं, ना कोई पुराण करते हैं। एक्स टेम्पो ज्ञान चल रहा है, फॉलोअर बहुत है। तो शास्त्र के अनुसार ज्ञान देना होगा। तो ज्ञान कैसे देंगे, अध्यारोप अपवाद शैली से ज्ञान देना होता है। अध्यारोप अपवाद, अध्यारोप, अध्यारोप सुपर इंपोजिशन, अपवाद निगेशन। तो ये जगत क्या है, सुपर इंपोजिशन ऑन ब्रह्मन। अपवाद क्या है, उसको निगेट करो तब ब्रह्मन मिल जाएगा। और डिटेल जानना हो तो आप, कितनी तारीख को है अशोक जी हम लोग का क्रिएटर क्रिएशन एंड बियॉन्ड, 9-10-11 को, तो आपको और डिटेल में बताएंगे क्या है ये सुपर पोजिशन निगेशन। तत्व दर्शन मतलब ब्रह्मनिष्ठ। अब ज्ञान की स्तुति कर रहे हैं, अगला श्लोक।
यज्ञात्वान पुनर्मोहम् यास्यसि पांडव,
एवं
यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण,
येन भूतान्यशेषेण
द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि,
द्रक्ष्यात्मन्यथो मयि
यज्ञात्वान पुनर्मोहम् यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण
द्रक्ष्यस्यात्मन्यतो मयि।
यत् ज्ञात्वा न पुनः मोहम् एवं व्यास्यसि पांडव, जिसको जानने के बाद में ओ अर्जुन फिर से तुमको मोह नहीं होगा। मोह क्या है, मोह है कि रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्ल्ड, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग अबाउट सेल्फ, ये मोह है। उस मोह के कारण अर्जुन की क्या अवस्था हो गई थी, इनकैपेबल, रो रहा था, दुखी था। क्यों दुखी था, क्योंकि जगत को सत्य मान रहा था कि ये सब जिंदा रहेंगे, इतने लोग सब यहां खड़े हैं, जगत को सत्य मान रहा था, अपने को कर्ता मान रहा था, मैं मारूंगा इन लोग को, ये सब रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। अर्जुन के अंदर भी आत्मा है, वो आत्मा कैसी है, करता है। अर्जुन अपने को क्या मान रहा है, कर्ता मान रहा है। देखो ये है सब मोह, रो रहा था, दुखी था, किसके कारण, मोह के कारण। क्यों दुखी था, हमारे स्वजन को हम मारेंगे, मार डालेंगे इनको सबको, ये मर जाएंगे, इसलिए रो रहा था। जगत को सत्य मान रहा था, ये सब सत्य हैं। देखो इसमें केवल जानना है, यह सरल है, इस ज्ञान के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, जितने दुख हैं संसार के दुख सारे खत्म हो जाएंगे, वन स्ट्रोक में सब खत्म हो जाएंगे। केवल आपको जानना है कि आप कौन हो, आप देह हो कि आत्मा हो, इतना जानने से चेंज हो जाएगा सब कुछ। ये न भूतानी अशेषे न द्रच्यसी आत्मनि अथो मई, इसको जानने से क्या होगा कि आपको जितने भी भूत हैं अशेषेन, जितने भी बीइंग्स हैं, चर हो अचर हो, सब आपको अपनी आत्मा में दिखाई पड़ेगा। अभी कब कहां दिखाई पड़ता है? ज्ञान होने के बाद में क्या पता लगेगा? ये सब मेरी आत्मा के अंदर है। अथ मई, और मेरे में है, मेरे में मतलब भगवान में। ज्ञान होने के बाद में सारा जगत जितना भी है, चर अचर जितने भी भूत हैं, जितने भी बीइंग्स हैं, वो सारे के सारे आपकी अपनी आत्मा में नजर आएंगे। अभी हमको बाहर नजर आते हैं सब, वो सब के सब भीतर नजर आएंगे और भगवान के अंदर नजर आएंगे। ये क्या है नजर वाला, क्या है हिसाब किताब है, नजर क्या होता है, सब नजर आए। देखो ब्रह्मन जो है वो अधिष्ठान है, सबस्ट्रेटम है, उस अधिष्ठान के ऊपर ही सारा जगत अध्यारोपित है। जब आपको सत्य का पता लगेगा कि मैं कौन हूं, मैं ये आत्मा हूं और ये आत्मा ब्रह्म ही है, आत्मा और ब्रह्म में क्या फर्क है? हाँ, जब कंडीशन बाई बॉडी हो जाता है ब्रह्मन, तब उसको हम कहते हैं आत्मन है। इसी आत्मन को अगर अनकंडीशन कर दें तब वो ब्रह्मन हो गया। तो ब्रह्मन क्या है? वो सपोर्ट है। आत्मा क्या है? आत्मा ही ब्रह्मन है। अगर जिस दिन हमको ज्ञान हो जाएगा, मोह हमारा चला जाएगा, तो हमको कहां नजर आएगा? मैं कौन हूं? मैं सबस्ट्रेटम हूं ऑफ द होल वर्ल्ड। होल वर्ल्ड कहां है? मेरे में है और भगवान में है। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मभि, सब जगह ब्रह्मार्पणम ब्रह्मभि, ब्रह्मार्पणो ब्रह्मनावतम, और आत्मार्पणम आत्मभि, आत्मग्नो आत्मनो, सेम थिंग। ब्रह्म की जगह आत्मा कर दो, ब्रह्म और आत्मा तो एक है ना, अभी बताया हमने, ब्रह्म और आत्मा एक। और हम ज्ञानी की दृष्टि क्या है? ब्रह्मार्पणम ब्रह्मभि, ब्रह्मग्नो ब्रह्मनाहुतम, ब्रह्म ही बतेंगे ब्रह्म, आत्मार्पणम। हमको ज्ञान हो गया मेरी आत्मा ब्रह्मन है, सब कहाँ है? ये सब मेरी आत्मा में नजर आ रहा है। ज्ञान होने से ऐसा पता लगेगा। नेक्स्ट,
सर्वे ज्ञानप्लवेनैव मृजिनं संतरिष्यसि अपि चेदसि पापेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव मृजिनं संतरिष्यसि।
अच्छा, हम लोग जब गीता पढ़ते हैं ना, तो एक ही मन के अंदर प्रश्न एक आता है, बराबर आता है ये कि मेरे जैसा पापी क्या मुक्त हो सकता है? तुलसीदास जी अपने आप को भी कहते हैं कि मेरे जैसा पापी इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर हम अपना पास्ट देखें, हम थोड़ा चिंतन करें, तो हम लोग को सबके अंदर नजर आएगा हमने क्या क्या पाप किए हैं, और अपने आप को सबसे पापी मानते हैं कि हम हमारे जैसा पापी और कोई नहीं है। कितने इलीगल काम किए हैं, कितनी बार झूठ बोला है, कितनी बार लोगों को ठगा है, कितनी बार जो है चोरी की है, टैक्स की चोरी की है कि दूसरे की चोरी की है कि किसी का लेख अपने नाम में लिख लिया वो भी चोरी है, या इमोरल काम भी कर दिया कई बार। करने के बाद में जो हम सोचते हैं ये मेरे लिए है, इस जन्म में मेरे से कुछ नहीं होगा, हमने जितने पाप किए हैं इस जन्म में हमारा कोई उद्धार नहीं हो सकता है। तो भगवान कहते हैं देखो, अपिचेत असी पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम, तुम सब पापियों में सबसे अधिक पाप तुमने किया है, सबसे अधिक पाप, उससे ज्यादा कोई पाप कोई नहीं कर सकता है। क्या क्या पाप किया है हमने? बोले तुमने जो है उल्टा पलटा खाया, तकलीफ पेट में हमको हुई, दूसरे को नहीं होती है, आपने ज्यादा खा लिया, तकलीफ किसको होगी। आपने चोरी की, आपने छिनताई की, किसी को गाली दिया, किसी की पॉकेट मार ली, या जितने किस्म के पाप हो सकते हैं, भ्रूण हत्या की या ब्राह्मण हत्या की, गो हत्या की, और कोई पाप बताओ।
झूठ बोला
सब किस्म के आपने पाप किए, मान लीजिए सब कर लिया हमने, रत्नाकर, उंगलीमल, ये सब तो बहुत पाप किया उन्होंने। सर्वम ज्ञान प्लवेन एव ब्रजिनम संतरिष्यति, ब्रजिनम मतलब संपूर्ण पाप का समुद्र, इतना पाप किया है कि हमारा समुद्र की तरह पाप किया, इतना पाप हो गया है। बोलते हैं ज्ञान की नौका में बैठकर निसंदेह तुम सारे पाप समुद्र को पार कर जाओगे। ज्ञान की नौका क्या है? पाप किसने किए हैं? मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। आत्मा क्या है? अकर्ता है। पाप किसने किए हैं? आत्मा ने किए नहीं। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, इसलिए मैंने कोई पाप नहीं किया। जिस दिन ये ज्ञान हो जाएगा कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं अकर्ता हूं, तो क्या आप आज ब्राह्मण हुए कि आगे भी ब्राह्मण थे? आगे भी ब्राह्मण ही थे, आपको पता नहीं था कि आप ब्राह्मण हो। ब्राह्मण ने तो नहीं किए, इतना तो मान लो। जिस दिन आप ज्ञानी बन गए, जहां दिन आप ब्राह्मण हो गए, उस दिन हमने देखो, एक होता है आत्मा, दूसरी है अनात्मा। गुना गुणेषु वर्तन्ते, भगवान ने आगे कहा है, हम लोगों ने पढ़ा है, कौन वर्तन कर रहा है? गुण गुण के साथ वर्तन कर रहे हैं। गुण का मतलब क्या? सतरजस्तमस, उससे क्या आया? पंच महाभूत आए। मेरा शरीर किससे बना है? पंच महाभूत से। आपका किससे बना है? पंच महाभूत से। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, किसके साथ वर्तन हो रहा है? पंच महाभूत का, पंच महाभूत के साथ वर्तन हो रहा है। आत्मा क्या बोल रहा है ना? अभी हमने देखा आत्मा इलेक्ट्रिसिटी प्रकाश नहीं दे रहा है, प्रकाश कौन दे रहा है? बल दे रहा है। हवा अगर लगा दे, फैन लगा दे, तो कौन दे रहा है? आप बोलोगे कि इलेक्ट्रिसिटी हवा दे रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रकाश दे रहा है, तो नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की उपस्थिति के अंदर में वो इक्विपमेंट कर रहा है। तो जितने भी व्यवहार हो रहे हैं वो तो अनात्मा में हो रहे हैं, और हम अपने आप को पापी माने बैठे हैं कि मेरे जैसा कोई पापी और कोई हो नहीं सकता, मेरे जैसा दुष्ट, मेरे जैसा खल, मेरे जैसा पापी कोई नहीं हो सकता। ज्ञान की नौका में बैठ जाओ। क्या है ज्ञान? मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म कैसा है? अकर्ता है। आपको तो आज पता लगा, आप आज अकर्ता हुए, नहीं, आपने पिछले जन्मों में जो कुछ भी किया है उस टाइम भी आप ब्रह्म थे। तो पिछले जन्मों का जितना भी पाप और पुण्य दोनों खत्म हो गया, खत्म। ज्ञानी की और पाप पुण्य कुछ नहीं रह जाते, केवल प्रारब्ध को कुछ नहीं किया जा सकता। प्रारब्ध मतलब जिसके लिए ये शरीर बना है, जिस सुख दुख को भोगने के लिए शरीर बना है, वो सुख दुख चाहे वो ज्ञानी हो चाहे वो अज्ञानी हो, दोनों को ही भोगना है। अज्ञानी बोलेंगे ये ज्ञानी तो ये तो दुखी हो रहा है, इसको कैंसर हो गया है, ऐसा कहते हैं लोगों, इसको कैंसर हो गया है। मगर उससे पूछो ज्ञानी से किसको कैंसर हुआ, शरीर को हुआ है, मैं शरीर थोड़ी ना हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, आत्मा को कैंसर नहीं होता है, ब्रह्मन को कैंसर नहीं होता है, शरीर को हुआ, शरीर भोग रहा है, भोगने दो, मैं शरीर से अलग हूं। मगर अज्ञानी, अज्ञानी क्या कहता है, वो ज्ञानी जो है भोग रहा है, वो दुखी है, अज्ञानी उसके शरीर को देख रहा है और ज्ञानी उस शरीर को अपना मानता ही नहीं है, मेरा शरीर नहीं है, मेरा शरीर भोग रहा है, भोगने दो। तो सर्वम ज्ञान प्रलेपन एवं ब्रजनम संतरिष्यति। देखो केवल ज्ञान से ही सारे पाप खत्म हो सकते हैं, कोई कर्म कोई उपासना कोई प्रायश्चित कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। कर्म उपासना सब ज्ञान के पहले चाहिए, जितने भी कर्म है जितने भी उपासना है ज्ञान के पहले चाहिए, ताकि मन शुद्ध हो, ये ज्ञान बैठ जाए, समझ में आ जाए, पकड़ में आ जाए। अब समझ में आया कैसे वो पार कर जाता है सारे पापों को, उसको पता लग गया कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्मन हूं, आत्मा और ब्रह्मन अकर्ता हैं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे आज पता लगा कि मैं ब्रह्मन हूं, मगर मैं तो बराबर ब्रह्मन था, तो पीछे जन्मों में जो मैंने पाप पुण्य किए मैंने नहीं किए, आत्मा ब्रह्मन तब भी कुछ नहीं करता था, इसलिए पिछले पाप और पुण्य कभी फ्रक्टिफाई नहीं होंगे, कभी फ्रक्टिफाई नहीं होंगे, दूसरा जन्म नहीं देंगे, ये जन्म प्रारब्ध हमको भोगना पड़ेगा, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। अब इसके बाद में अगर किसी ज्ञानी को आप देखो और कहो कि ये ज्ञानी है, है? ये तो दुखी है, नहीं ऐसा मत सोचना कभी, इसको हार्ट अटैक क्यों हो गया, मैंने ऐसा नहीं सोचना कभी, वो तो ज्ञानी अज्ञानी दोनों को प्रारब्ध भोगने हैं, जब ये ज्ञान आपको हो जाएगा ना तब आपको ठीक ठीक समझ आएगा। मगर उसको पूछो, ठाकुर रामकृष्ण उनको थ्रोट का कैंसर था, जब वो आत्मा में विचरण करते थे तब शरीर का भान नहीं है, कुछ नहीं, क्या हो रहा नहीं हो रहा ठीक है, पर जैसे ही शरीर का ज्ञान होता था तब वो सोचते थे अरे ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है यहां पर, थोड़ा ठंडा खा ले, क्या रसगुल्ला खाने से ठीक हो जाएगा, कि आइसक्रीम खाने से ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचते थे। मगर जैसे ही वो शरीर से ऊपर गए, ध्यान में समाधिस्थ हो गया, अब ज्ञान नहीं है शरीर का, कुछ नहीं, शरीर अलग है आत्मा अलग है। हम लोग विवेक चूड़ामणि में यही तो पढ़ रहे हैं बार बार, पंचकोश पंचकोश विवेक करो, पंचकोश आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है। तो ज्ञान से ये सब खत्म हो जाएगा, कैसे होगा वो अगले श्लोक में है, अगले दिन देखेंगे हम लोग ज्ञान कैसे खत्म कर देता है पाप को, देखेंगे। ओ
पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।